समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
राम नाम का ज्योति पुंज ही जग में लाए सवेरा, वो बिखराए नई रोशनी जब हो जाए अंधेरा।
उसे ईश्वर कहें या प्रकृति, उस परम शक्ति के नाम से ही सभी का जीवन आनंदित है। उस परम शक्ति ने ही हमें स्वास्थ्य के रूप में सबसे बड़ा उपहार दिया है, संपत्ति संतुष्टि के रूप में दी है, मुस्कुराहट के रूप में सबसे बड़ी ताकत दी है और वफादारी के रूप में सबसे उत्तम रिश्ता। तो हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए जीवन पथ पर। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस नई सुबह में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। मी एंड मुकेश, वी आर थ्रिल्ड टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम एंड स्टार्ट दिस डे। इंडीड, इट्स अ ब्राइट न्यू डे विद न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू प्रॉमिसेस, एंड यू मेड मी रियलाइज एक्चुअली राइट नाउ दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव। सो
बिल्कुल,
वी शुड बी कंटिन्यूइंग विद दैट एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी, ब्लेंड ऑफ म्यूजिक। वी ऑल्सो हैव न्यूज एंड वी आर ब्रिंगिंग यू आर प्रोग्राम। वी आर बिगिनिंग फर्स्ट विद द हेडलाइंस।
जी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 चुनावी जिले शामिल हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण में रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया था। केरलम, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 4 मई को मतगणना होगी।
The Election Commission has announced a stringent security plan for the second phase of assembly polls in West Bengal, making it clear that any attempt to disrupt voting or obstruct electors would be dealt with firmly. The EC directed security personnel to carry out constituency-wise deployment and step up area domination exercises in interior lanes and sensitive neighborhoods to ensure that voters can exercise their franchise without fear. During a high-level coordination meeting attended by poll officials, senior police officers and commanders of central forces from 3 election districts under Kolkata, the EC reviewed the preparedness in 142 constituencies that would go to polls on April 29. Meanwhile, State Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agarwal, who visited Kagdweep in South 24 Parganas district ahead of the second phase of polling, held a meeting with representatives of various political parties and urged them to encourage voters to participate freely.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पश्चिम बंगाल में 79 कच्चे बमों की बरामदगी के मामले में जांच के लिए मामला दर्ज किया है। NIA के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसरण में आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने मामला दर्ज किया। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को चुनाव वाले राज्य में देसी बमों के अवैध निर्माण में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था। ये निर्देश तब जारी किया गया जब पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में एक व्यक्ति के घर से बड़ी संख्या में देसी बम बरामद किए, जो कथित तौर पर TMC का कार्यकर्ता था।
Prime Minister Narendra Modi will arrive in Gangtok today on a two-day visit to Sikkim. Upon his arrival, the Prime Minister will take part in a road show from Biraludwar to MG Mark this afternoon. Later, he will interact with the BJP workers, and we have more details on this from our correspondent.
The visit of Prime Minister Narendra Modi marks an important milestone in the golden jubilee year of Sikkim statehood and reflects the Modi government's continued commitment to the sustainable development of Sikkim. Prime Minister will take part in a grand road show from Biralu Dwar to MG Mark this afternoon tomorrow. The Prime Minister will participate in the closing ceremony of Sikkim's 50th year of statehood celebrations at the historic Paljo Stadium, where he will inaugurate, launch and lay the foundation stone of multiple development projects over 4,000 crore rupees across the state. With Mainak, this is Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने ऑनलाइन ड्रग तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन वाइप वेब आधारित अवैध गतिविधियां रोकथाम और परिवर्तन अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित दवाओं की अवैध बिक्री और वितरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये पहल जुलाई 2025 में ऑपरेशन मैड मैक्स के तहत की गई पिछली कार्रवाई की सफलता पर आधारित है। यह ऑपरेशन अमरीकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एनसीबी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड आज नई दिल्ली में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगरा के ताजमहल में न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के साथ श्री गोयल ने कहा कि वर्षों की उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। दोनों देशों के नेताओं की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि एनपीटी से संबंधित पक्षों का समीक्षा सम्मेलन आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। 4 सप्ताह के इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र ने किया है। इस सम्मेलन में संबंधित देश एनपीटी के 3 मुख्य स्तंभों निशस्त्रीकरण, अप्रसार और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करेंगे।
एनपीटी की समीक्षा का यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सशस्त्र संघर्ष चरम पर है। हाल के वर्षों में परमाणु हथियार संपन्न देशों सहित विभिन्न देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और सीधे सशस्त्र टकराव की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इनमें परमाणु सुविधाओं पर हमले, परमाणु हथियारों के संभावित उपयोग या परमाणु हथियार परीक्षण फिर शुरू करने की धमकियां, परमाणु हथियारों के जखीरे का लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण और अप्रसार से जुड़ी मौजूदा चुनौतियां शामिल हैं। ये सभी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल की गंभीरता को दर्शाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की निशस्त्रीकरण के प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सु ने कहा कि यह सम्मेलन देशों को बेहद कठिन सुरक्षा माहौल और लगातार चिंताजनक होती बयानबाजी की पृष्ठभूमि में आपसी सहमति वाले क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
ऑन टू स्पोर्ट्स नाउ।
जी,
इन आईपीएल क्रिकेट कोलकाता नाइट राइडर्स डिफीटेड लखनऊ सुपर जायंट्स इन अ सुपर ओवर थ्रिलर एट इकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ लास्ट नाइट। सो चेसिंग अ टारगेट ऑफ 156 रन व्हिच वाज सेट बाय कोलकाता नाइट राइडर्स, Lucknow Super Giants made 155 for 8 in the stipulated 20 overs. So in the super over that followed, the Lucknow Super Giants managed to score only 1 run as they lost both of their wickets. In reply, well, Kolkata Knight Riders Rinku Singh drove the first ball to the fence, scoring 4 runs and then sealed the match. So Rinku was adjudged player of the match. And in today's fixture, Delhi Capitals will face Royal Challengers Bengaluru at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m.
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में ऑनलाइन गेमिंग नियमों 2026 के प्रचार और विनियमन पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर हैं 0112331081, 0112371717, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इसके अलावा और अब रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की खबरों का।
जी,
सबसे पहले बात दिल्ली के समाचारों की। तो दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कल होगा। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 8वीं विधानसभा का 5वां सत्र बुलाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हो सकती है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो ने आज अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच के लिए सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है। इस फैसले से मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सकेगा। दिल्ली मेट्रो के आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यात्री बदलाव के समय की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी और लू की चुनौती को देखते हुए हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को राजधानी में लागू किया है। इस योजना के अनुसार 400 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयों और मेडिकल सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता आदित्य की ये विशेष रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राजधानी के 30 से अधिक अस्पतालों में कूल रूम तैयार किए गए हैं। साथ ही 330 एम्बुलेंस को हर समय सेवा में तैनात किया गया है। राजधानी के कई क्षेत्रों में वाटर एटीएम, लगभग 2000 वाटर कूलर्स और 11000 से अधिक कूलिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। विद्यालयों में वाटर बेल सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को समय समय पर पानी पीने के लिए सूचित किया जाएगा। इसके अलावा दफ्तरों में काम के समय में भी बदलाव किए गए हैं। बहुत अधिक हीट वेव की अवस्था में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले दूरों के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहरी कार्यों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की जाए। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों, विशेषकर दिल्ली विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी और छाया की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
Well, now we are heading to Chennai. Anna University has come out with a 10-digit faculty identification number there to fight the fake faculty issue from 2026-27 academic year. The university has directed all engineering faculty to register their personal academic credentials along with the geotagged picture within the campus to get the new ID before April 30. The university also asked the respective principals to verify the details of their faculty members. It has been mandated to verify an authentic faculty details using biometric of each faculty duly verified through UIDAI. The suspension of former Vice Chancellor R. Velraj by the university's syndicate was set aside by the then Governor R. N. Ravi. The case is pending in court. Madras High Court also quashed a DVAC case against previous affiliation director V. R. Giridev. Now we will head to Bengaluru, Mukesh.
Ji.
The Karnataka Health and Family Welfare Department has directed all government health facilities to set up dedicated heat stroke management rooms amid rising temperatures. So as per a recent circular, community health centres must allocate 2 beds, taluk hospitals 5 beds and district hospitals 10 beds, with facilities operational from March 1 to July 31, 2026. These rooms, they should be equipped with essentials such as fans, ice cube thermometers. The department also instructed hospitals to train doctors and paramedical staff to handle these heat-related illnesses and also note that timely care can prevent serious complications and deaths. This move comes as temperatures in Bengaluru crossed 35 degrees Celsius and this highlights the growing impact of heat waves even in traditionally moderate climates, and it's essential, you know, nowadays to remain hydrated every day. Another update from Bengaluru.
Bilkul, bataiye.
A group of 24 minor boys was rescued at KSR Bengaluru City Railway Station after Railway Protection Force personnel found them unaccompanied and behaving nervously on Platform 5. Upon questioning, officials discovered that none of the children spoke Kannada and all were Araria district in Bihar. The boys revealed they had fled harassment, including forced labor.
बिल्कुल, और अब बेंगलुरु से हमारे श्रोताओं को लेकर चलते हैं शगुन महाराष्ट्र की तरफ।
Go ahead.
तो महाराष्ट्र नगर निगम और औद्योगिक विकास निगम ने नवी मुंबई में एक एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क के विकास कार्यों की शुरुआत की है। परियोजनाओं का पहला चरण लगभग 179.29 एकड़ भूमि पार्सल L1 के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से 12 भूखंडों की पेशकश की जाएगी। ये पहल महाराष्ट्र सरकार की MIDC पास थ्रू नीति के तहत पोषित है। इसमें आंतरिक सड़क ढांचे, जल आपूर्ति प्रणाली, सीवेज सुविधाएं और वर्षा जल निकासी सहित मुख्य बुनियादी ढांचे के विकास कार्य किए जाएंगे। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने पहली T20 मुंबई लीग का आधिकारिक लोगो जारी किया है। पुरुष और महिला दोनों स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 2 मई को होगी। इसके लिए 2411 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। टूर्नामेंट के पहले संस्करण में 3 टीमें भाग लेंगी। पुरुषों की T20 मुंबई लीग में 8 टीमें होंगी जिनमें 18 से 20 खिलाड़ी होंगे, जबकि महिलाओं की लीग में 3 टीमें शामिल होंगी जिनमें 16 से 18 खिलाड़ी दावेदारी पेश करेंगे। प्रत्येक टीम में कम से कम 2 अंडर-19 खिलाड़ियों का होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय ने इस वर्ष की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। हालांकि परीक्षा का समय मूल कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगा। विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित कॉलेजों, उनके संकाय सदस्यों, प्रमुखों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे शेष MU ग्रीष्मकालीन परीक्षा को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित करें। इस बीच MU ने स्नातक डिग्री कार्यक्रमों के लिए पूर्व पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब
Now we'll head to Hyderabad.
बिल्कुल बिल्कुल।
The 2027 census operations officially commenced in Telangana this Sunday, marked by the participation of the state's top leadership. Governor Shiv Pratap Shukla formally launched the initiative by registering his details through the online self-enumeration portal, joining the governor in this digital registration process. So Governor highlighted that comprehensive participation is essential for the state's development, ensuring no family is left out of the national records. Chief Minister Revant Reddy also completed his self-enumeration process on the official government website. He was accompanied by Telangana Census Director Bharti Holikeri, GHMC Commissioner R.V. Karnan and other senior officials. And following his registration, the Chief Minister appealed to the public to contribute to this nation-building exercise, which is 2027 census.
श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का।
जी।
इधर राजधानी दिल्ली में आज लू चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर हम शगुन बात करें, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जैसी हीट वेव और देश में भी एक अलग ही प्रकार का मतलब उमस भरा और गर्म मौसम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को हाइड्रेटेड रखें।
Exactly.
इसके लिए
All the times.
बिल्कुल आम पन्ना, शिकंजी, लस्सी, गन्ने का जूस, इस तरह की चीजें बॉडी को, शरीर को जो है उस पानी की कमी नहीं होने देती।
कैरिंग एन अम्ब्रेला विल आल्सो बिल्कुल help.
अपने साथ बिल्कुल छाता रखकर घर से बाहर निकलें। और मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए कि जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें धूप बिल्कुल सीधी सिर पर पड़ती है, उसमें घरों से बाहर ना निकलें। और
इफ पॉसिबल
बिल्कुल बिल्कुल अगर जाना है तो जैसा कि आपने बताया कि अपने साथ एक छाता लेकर चलें, पानी की छोटी बोतल अपने साथ रखकर चलें।
आल्सो अप्लाइंग लोड्स ऑफ सनस्क्रीन
जी
कैन हेल्प।
तो इस तरह की सावधानियां आप लोग बरत सकते हैं। और बात करते हैं इसी कड़ी में मुंबई के मौसम से जुड़ी कवायद की, तो मुंबई में भी आज आसमान साफ रहेगा। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर बात करें कोलकाता की, तो आज वहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है।
Chennai is expected to have partly cloudy sky and the minimum temperature was 28 degrees Celsius. Maximum will be around 39 degrees there. Bengaluru is expected to have, again, partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. Maximum will be around 36 degrees. Hyderabad, again, partly cloudy sky and there is a possibility of development of thunder lightning. The minimum temperature will be 28 degrees Celsius and maximum it's 41 degrees Celsius there.
अब बात आज के इतिहास की।
We will take our listeners way back in time, starting with the year 1521. Well, in battle of Mactan, local forces led by Lapu Lapu defeated Spanish troops resisting foreign control in the Philippines. Now, Mukesh, in the year 1667, a blind and impoverished John Milton sold the copyright of his epic poem Paradise Lost to a printer for just £5.
और 1854 में भारत ने पहली टेलीग्राफ लाइन मुंबई और पुणे के बीच शुरू की गई। इससे संचार व्यवस्था में तेजी आई।
In 1941, during the Battle of Greece, Axis powers occupied Athens as German troops entered the city. 1945, Soviet forces launched their final assault on Berlin, encircling the city. The Soviet forces did that and signaling the imminent end of World War II in Europe.
और वर्ष 1960 में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना की गई। ये भारतीय सशस्त्र बलों और नागरिक सेवाओं के लिए रणनीतिक शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र है। इसके एक बरस बाद यानी कि 1961 में सेरा लियोन ने 150 वर्षों के बाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त की।
In 1978, the government in Afghanistan was overthrown and a communist regime was established under the Savar Revolution. In 1992, breaking a 700-year tradition, Betty Boothroyd was elected as the first female speaker of the British House of Commons.
1994 में दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव शुरू हुए, जिसमें सभी नस्लों के नागरिकों को पहली बार मतदान करने की अनुमति मिली, जिससे रंग भेद के युग का प्रभावी रूप से अंत हुआ।
In 2005, the Airbus A380, the world's largest passenger aircraft, made its first successful flight in France.
और 2017 में उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के अंतर्गत भारत की पहली क्षेत्रीय उड़ान शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सभी नागरिकों के लिए किफायती बनाना था। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है, तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं टीके माधवन की। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे केरलम के प्रसिद्ध समाज सुधारक और पत्रकार थे। उन्होंने अनेक तरह की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए। वर्ष 1924 के वायकोम मंदिर सत्याग्रह के नेता के रूप में माधवन को प्रसिद्धि मिली। हरिजनों के मंदिर में प्रवेश को लेकर ये सत्याग्रह 20 महीनों तक चला। इसमें माधवन गिरफ्तार भी किए गए। टीके माधवन ने तिरुवनवेली में गांधी जी से मुलाकात की और वायकोम की यात्रा करने के लिए उन्हें मनाया। इसके बाद गांधी जी के सहयोग से सत्याग्रह आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।
Well, today, listeners, we are also remembering Al Hurt. Al Hurt, the musician, well, the trumpeter, basically. So his catchy trumpet part, they float effortlessly in his songs along with bells and other instruments as well, harpsichord. Yeah. And the genre of his songs, it is actually late 60s soul jazz swinger. Actually, the feel of the song is that you're listening in the background, Soul in the Hall. There is another song, another instrumental piece that I have chosen. This is Java.
श्रोताओं, अगर बात करें हिंदी फिल्मों की तो आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों के एक सुविख्यात अभिनेता के रूप में जाने जाने वाले विनोद खन्ना की।
जी।
विनोद खन्ना अपने वक्त के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में इसे एक गिने जाते थे। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नकारात्मक किरदारों से की, बाद में वे मुख्य धारा के हीरो बने। उन्होंने सुनील दत्त की 1968 में आई फिल्म मन का मीत में विलेन का किरदार निभाया। दयावान, कुर्बानी, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, मेरे अपने, पूरब और पश्चिम, रेशमा और शेरा, हाथ की सफाई, हेराफेरी सहित उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ ये सदाबहार नगमे।
रुक जाना नहीं कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए जाने मन गुल बदन
Well, we are telling you about Vinod Khanna. Well, we recognize him as a style and fashion icon as well. And you were telling about the accolades, numerous accolades that he has received, one of which is 65th National Film Awards, our highest cinematic award. So he actually portrayed an angry young man, a man in the social drama Mere Apne. I had to mention that. And well, his legacy continues to inspire.
Bilkul.
से मुझे तेरा प्यार मिला अपनी तो है बस ये ही दुआ हर जन्म यूं मिल के रहेंगे हर जन्म यूं मिल के रहेंगे
सुंदर सा हो अपना
Listeners, today we're also remembering Mary Wollstonecraft. Well, Wollstonecraft is best known for her different work. Well, it's a vindication of the rights of women in 1792. Well, Wollstonecraft wrote across many genres. They include fiction, travel and children's books, to literary criticism, translations and political essays. One of her novels, which is A Mind, a Fiction, in 1788, she declares her intention to reveal the mind of a woman who has thinking powers. Listeners, today, we're also honoring Zohra Segal. Well, she was more than just a performer. She was joy, wit, and grace rolled into one. From stage to screen, she reminded us to live life with laughter and spirit, and her legacy still makes us smile.
राग छेड़ मुतरिबा तरफ फिजा अलम रुबा असर सदाए साज का जिगर में आग दे लगा हर एक लपे हो सदा न हाथ रोक साकिया पिलाए जा अभी तो मैं जवान रोहिला किस कदर जालिम जफाजू कीना परवर था निकाली शाह तैमूरी की आंखें नोके खंजर से दिया
श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है हिंदी फिल्मों की एक और प्रसिद्ध अभिनेता तथा फिल्म निर्माता निर्देशक फिरोज खान की। फिरोज अपनी खास शैली, अलग अंदाज और किरदारों के लिए जाने जाते थे। आइए सुनते हैं 1975 में आई उनकी फिल्म धर्मात्मा से ये गीत।
तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खींचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला
Well, listeners, such a beautiful track this was. So Firoz Khan was never just an actor. Well, he was an attitude, stitched into silk shirt, sunglasses, a man who walked like the background score followed him automatically. And you can hear it in this background score as well. So impossibly handsome. Well, his voice, the slow swagger, the confidence that didn't ask for permission. He redefined cool long before the word became fashionable.
और श्रोताओं, फिल्म धर्मात्मा से ही फिरोज और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उनके चाहने वालों की जुबान पर चढ़ा रहता है।
खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो
Well, Firoz Khan knew well who exactly he was in cinema and in life, and that rare certainty reflected in everything he touched. So some stars shine bright, a very few set the standard. He belonged firmly to the latter.
हमारे शब्दों में अगर हम बात करें एक सुविचार की, तो धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। इसी के साथ मुकेश कुमार बल और शगुन चोपड़ा को दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
वेल वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।
लगती हो।